एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार और ज्ञान गोष्ठी में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मेजबान
और मैं हूं आपकी साथी विशेषज्ञ। आज हम शरीर के सबसे बड़े जासूस की कहानी में उतरने वाले हैं।
जासूस, ये दिलचस्प है।
जी, एक ऐसा सिस्टम जो दोस्त और दुश्मन के बीच का फर्क जानता है, लेकिन जब ये गलती करता है तो नतीजे मतलब बहुत भयानक हो सकते हैं।
तो हम बात कर रहे हैं हमारे इम्यून सिस्टम की, यानी हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली की।
बिल्कुल, और इस पूरी पड़ताल में हमारी गाइड होगी पॉल क्लिनरमैन की किताब द इम्यून सिस्टम। जब मैंने ये किताब उठाई तो मैं सोच रहा था कि इम्यून सिस्टम के बारे में तो हम सब ने स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ाई है। इसमें ऐसा क्या नया होगा जो हमें हैरान कर दे, लेकिन सच कहूं ये किताब ये सोच से कहीं ज्यादा गहरी है।
बिल्कुल, खासकर आज के दौर में तो ये बहुत ही जरूरी विषय है।
हाँ, कोविड के बाद तो
कोविड-19 ने हमें सिखा दिया है ना, कि एक वायरस कैसे पूरी दुनिया को घुटनों पे ला सकता है।
और दूसरी तरफ कैंसर के इलाज में भी क्रांति आ रही है।
सही बात है,
जिसमें दवाइयां बाहर से नहीं बल्कि हमारे शरीर के अंदर से ही काम कर रही हैं।
इन सब के केंद्र में यही एक सवाल है, हमारा शरीर खुद को बचाता कैसे है
और कभी कभी खुद पर ही हमला क्यों कर देता है। तो चलिए इसी सवाल का पीछा करते हैं, लेकिन उससे पहले इस किताब के लेखक प्रोफेसर पॉल क्लिनरमैन के बारे में जानना जरूरी है।
जी,
वो कोई आम लेखक नहीं है, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इम्यूनोलॉजी के प्रोफेसर हैं।
और जो बात उन्हें खास बनाती है वो ये है कि वो सिर्फ एक लैब में काम करने वाले रिसर्चर नहीं है।
अच्छा,
वो एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर भी हैं। मतलब वो इस सिस्टम को सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं देखते बल्कि असली मरीजों की आंखों में भी देखते हैं।
तो उनका नजरिया बहुत प्रैक्टिकल होगा।
बिल्कुल, उन्होंने हेपेटाइटिस सी और HIV जैसे वायरस पर दशकों तक काम किया है।
और मुझे लगता है शायद यही वजह है कि ये किताब किसी भारी भरकम टेक्स्ट बुक जैसी नहीं लगती।
सही,
ये सिर्फ क्या है ये नहीं बताती बल्कि तो क्या मतलब इसका असली मरीजों और हमारी जिंदगी के लिए क्या मतलब है ये भी समझाती है।
तो किताब का बड़ा आइडिया क्या है? क्लिनरमैन का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि इम्यून सिस्टम वो कोई अच्छाई और बुराई के बीच की सीधी साधी लड़ाई नहीं है।
तो फिर क्या है?
ये एक ढाल भी है और एक तलवार भी। ये हमें भारी खतरों से तो बचाता ही है, लेकिन इसका असली कमाल है एक नाजुक संतुलन बनाए रखना।
संतुलन किस चीज के बीच में?
आक्रामकता और सहनशीलता के बीच, मतलब कब हमला करना है और कब शांत रहना है।
अच्छा,
ये जानना इसका सबसे जरूरी काम है। अगर ये बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाए तो ये हमारे अपने शरीर को ही नुकसान पहुंचाने लगता है।
और अगर बहुत ज्यादा सहनशील हो गया
तो इन्फेक्शन और कैंसर को पनपने का मौका मिल जाता है। हमारी लगभग हर बीमारी आप कह सकते हैं इसी संतुलन के बिगड़ने का नतीजा है।
तो ये किसी सेना से ज्यादा एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है।
क्या बात है, बहुत अच्छा उदाहरण है।
जहां हर सांस को सही समय पर सही सुर में बजना होता है। चलिए तो इस ऑर्केस्ट्रा के कुछ मुख्य कलाकारों से मिलते हैं। किताब हमें सबसे पहले हमारी रक्षा की पहली पंक्ति से मिलवाती है,
जिसे कहते हैं इनेट इम्यून सिस्टम या सहज प्रतिरक्षा प्रणाली। सोचिए आपको कहीं चोट लग गई या कांटा चुभ गया, कुछ ही मिनटों में वो जगह लाल हो जाती है, सूज जाती है, गर्म हो जाती है।
हाँ, होता है।
ये यही इनेट सिस्टम है। ये हमारे शरीर की स्थानीय पुलिस फोर्स है जो किसी भी खतरे की जगह पे सबसे पहले पहुंचती है।
और हम हमेशा इस सूजन को इन्फ्लेमेशन को कम करने की कोशिश करते हैं, दवाई लेते हैं। तो क्या हम अपने शरीर की मदद करने की कोशिश में उसे रोक रहे हैं? ये तो उल्टा लगता है।
बहुत अच्छा सवाल है ये। असल में सूजन कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
तो क्या है?
वो मदद पहुंचाने की एक रणनीति है। उस सूजन की वजह से खून की नसें थोड़ी चौड़ी हो जाती हैं ताकि मैक्रोफेज जैसी सफाई करने वाली कोशिकाएं आसानी से घटनास्थल पर पहुंच सके।
अच्छा, ताकि वो हमलावर बैक्टीरिया को निगल जाए।
बिल्कुल, तो थोड़ी बहुत सूजन असल में हीलिंग का एक जरूरी हिस्सा है। हाँ, अगर ये जरूरत से ज्यादा हो तब ये एक समस्या बन जाती है।
तो ये स्थानीय पुलिस तेजी से काम तो करती है लेकिन इसकी एक सीमा है। ये हमलावर का चेहरा याद नहीं रख सकती, ये बस इतना जानती है कि कोई बाहरी है। यहीं पर हमारी स्पेशल फोर्स काम आती है ना?
बिल्कुल, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी। इसे कहते हैं अडैप्टिव इम्यून सिस्टम या अनुकूलीय प्रतिरक्षा प्रणाली। और इस स्पेशल फोर्स के दो मुख्य सितारे हैं, टी सेल्स और बी सेल्स।
टी सेल्स और बी सेल्स?
टी सेल्स को आप सेना के जनरल और हत्यारे दोनों समझ सकती हैं। कुछ टी सेल्स पूरे हमले की रणनीति बनाते हैं और दूसरे जिन्हें किलर टी सेल्स कहते हैं,
किलर टी सेल्स,
वो सीधे जाकर वायरस से संक्रमित हो चुकी हमारी अपनी कोशिकाओं को ढूंढकर खत्म कर देते हैं।
तो किलर टी सेल्स सीधे जाकर संक्रमित कोशिकाओं को खत्म कर देते हैं, लेकिन क्या हम सिर्फ बचाव पर निर्भर हैं या हमारे पास कोई ऐसा हमलावर हथियार भी है जो वायरस को सेल में घुसने से पहले ही रोक दे?
यहीं पर बी सेल्स का रोल आता है। ये हमारी सेना की हथियार बनाने वाली फैक्ट्री है।
अच्छा।
बी सेल्स खास तरह के प्रोटीन बनाती हैं जिन्हें हम एंटीबॉडीज कहते हैं। ये वाई आकार के मिसाइल की तरह होते जो खून में तैरते रहते हैं
और किसी खास दुश्मन से जाकर चिपक जाते हैं, जैसे चिकन पॉक्स का वायरस।
बिल्कुल। फिर या तो वे उसे बेअसर कर देते हैं या दूसरी कोशिकाओं के लिए एक आसान निशाना बना देते हैं।
लेकिन इस अडाप्टिव सिस्टम की जो सबसे जादुई बात है वो है इसकी याददाश्त। एक मिनट रुककर इस पर सोचना चाहिए।
हाँ,
आपका शरीर सचमुच सीखता है। ये सिर्फ दिमाग नहीं है जो याद रखता है, आपकी कोशिकाएं भी याद रखती हैं।
ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल फीचर नहीं है, ये जिंदगी का एक कोड है। हमारा शरीर अपने इतिहास को अपनी कोशिकाओं में लिखकर रखता है।
हर इन्फेक्शन, हर वैक्सीन
हमारे शरीर के इतिहास की किताब में एक नया अध्याय जोड़ता है। लड़ाई जीतने के बाद कुछ टी सेल्स और बी सेल्स मेमोरी सेल्स के रूप में जिंदा रहते हैं,
एक अनुभवी सेना की तरह।
हाँ,
और इसी सिद्धांत पर वैक्सीन काम करती है। वैक्सीन कोई दवा नहीं है जो सीधे वायरस को मारती है, वो एक शिक्षक है।
बहुत सही कहा। वो इम्यून सिस्टम को एक सुरक्षित बूट कैंप का अनुभव देती है,
ताकि जब असली दुश्मन हमला करे तो हमारी अनुभवी सेना पहले से ही तैयार हो और उसे तुरंत खत्म कर दे।
बिल्कुल। लेकिन क्या होता है जब ये बेहतरीन सिस्टम, ये जासूस गड़बड़ा जाता है?
जब ये दोस्त और दुश्मन का फर्क भूलने लगता है।
हाँ हाँ।
किताब का एक बड़ा हिस्सा इसी के बारे में है। एक तरफ है इम्यूनो डिफिशियंसी की बीमारियां जहां सिस्टम बहुत कमजोर हो जाता है, जैसे
एचआईवी। वायरस कितना शातिर है, वो सीधे सेना के जनरल यानी हेल्पर टी सेल्स पर हमला करता है, जिससे पूरा कमांड सिस्टम ही ढह जाता है और शरीर मामूली सर्दी जुकाम से भी नहीं लड़ पाता।
और सिक्के का दूसरा पहलू है इम्यून सिस्टम का जरूरत से ज्यादा सक्रिय हो जाना,
जैसे
एलर्जी।
एलर्जी इसका सबसे आम उदाहरण है, जहां हमारा सिस्टम पराग कण या धूल जैसी बेकसूर चीजों को
खतरनाक दुश्मन समझ लेता है
और उन पर हमला बोल देता है।
लेकिन सबसे दुखद स्थिति है ऑटो इम्यूनिटी की, जहां ये जासूस पूरी तरह से धोखा खा जाता है।
हाँ।
और शरीर अपने ही खिलाफ एक गृह युद्ध छेड़ देता है,
और ये बहुत भयानक हो सकता है। टाइप 1 डायबिटीज में इम्यून सिस्टम पैनक्रियास की उन कोशिकाओं को नष्ट कर देता है जो इंसुलिन बनाती हैं।
रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये जोड़ों पर हमला करता है।
जी, लेखक कहते हैं कि ऑटो इम्यूनिटी वो कीमत है जो हम एक ऐसे इम्यून सिस्टम के लिए चुकाते हैं जो हजारों अलग अलग खतरों के बीच फर्क करने में सक्षम है।
मतलब कभी कभी इस जटिल सिस्टम से चूक हो जाती है।
हाँ,
ये सिस्टम का कोई डिजाइन दोष नहीं, बल्कि एक बेहद मुश्किल काम को करते हुए होने वाली एक दुखद गलती है।
लेकिन किताब का अंत उम्मीद से भरा है,
खासकर कैंसर के इलाज के क्षेत्र में।
हाँ, जिसे हम कैंसर इम्यूनोथेरेपी कहते हैं।
ये तो जैसे साइंस फिक्शन सच होने जैसा है।
ये सच में एक क्रांति है। सालों तक हम कैंसर का इलाज बाहरी जहर यानी कीमोथेरेपी से करते आए,
जो कैंसर कोशिकाओं के साथ साथ स्वस्थ कोशिकाओं को भी मार देती थी।
बिल्कुल। लेकिन अब हम समझ रहे हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम रोजाना कैंसर कोशिकाओं को पहचान कर खत्म करता रहता है।
अच्छा।
कैंसर तब होता है जब कुछ कोशिकाएं इस निगरानी से बचने और छिपने का तरीका ढूंढ लेती हैं।
वो ऐसा कैसे करती हैं?
वो इम्यून सिस्टम पर लगे ब्रेक्स को दबा देती हैं।
ब्रेक्स को?
हमारी टी सेल्स में कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं जो उन्हें बहुत ज्यादा आक्रामक होने से रोकते हैं, ताकि वो हमारे शरीर को ही नुकसान न पहुंचाएं।
ओके।
कैंसर कोशिकाएं चालाकी से इन्हीं ब्रेक्स को एक्टिवेट कर देती हैं और टी सेल्स उन्हें देखकर भी अनदेखा कर देते हैं।
तो इम्यूनोथेरेपी दवाएं इन ब्रेक्स को हटा देती हैं, जैसे एक पुलिस वाले के हाथ से हथकड़ी खोल देना।
बिल्कुल सही उपमा है। चेक पॉइंट इनहिबिटर जैसी दवाएं टी सेल्स पर लगे इन ब्रेक्स को हटा देती हैं
और हमारी अपनी टी सेल्स आजाद होकर कैंसर पर पूरी ताकत से हमला कर देती हैं।
एग्जैक्टली। हम बाहरी जहर देने के बजाय शरीर के अंदर के रक्षक को ही मजबूत और आजाद कर रहे हैं।
इस पूरी चर्चा से जो सबसे बड़ा संदेश मेरे लिए उभर कर आता है वो है संतुलन का विचार। हम अक्सर इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले प्रोडक्ट्स के विज्ञापन देखते हैं, लेकिन ये किताब बताती है कि मजबूत इम्यूनिटी का मतलब हमेशा ज्यादा इम्यूनिटी नहीं होता।
सही बात है। प्रभावी प्रतिरक्षा का मतलब अधिकतम सक्रियता नहीं बल्कि सही समय पर सही प्रतिक्रिया है।
तो जरूरत से ज्यादा बूस्टेड सिस्टम तो खतरनाक हो सकता है।
हाँ, वो ऑटो इम्यूनिटी का रूप ले सकता है। इसलिए हमें बूस्ट करने की सोच से आगे बढ़कर संतुलन साधने के बारे में सोचना चाहिए। अच्छी नींद, कम तनाव, संतुलित आहार,
ये सब हमारे इम्यून सिस्टम को संतुलित रखने में मदद करते हैं,
उसे हर वक्त लड़ने के लिए उकसाते नहीं है।
और दूसरा बड़ा संदेश है कि इम्यून सिस्टम एक दोधारी तलवार है। जब हमें किसी इन्फेक्शन में बुखार, बदन दर्द या थकान महसूस होती है तो वो ज्यादातर वायरस की वजह से नहीं
बल्कि हमारी अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली के जोरदार हमले के कारण होता है। वो हमारी अपनी सेना के चलाए हुए हथियारों का असर है।
सही। और इसी से जुड़ा तीसरा विचार है याददाश्त की शक्ति। ये सोचना ही कमाल है कि हम अपने अनुभवों को मॉलिक्यूलर लेवल पर साथ लेकर चलते हैं।
और इसी याददाश्त की वजह से टीके, वैक्सीन सार्वजनिक स्वास्थ्य के सबसे बड़े उपलब्धियों में से एक है।
तो इस सब ज्ञान का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है?
एक तो ये बीमारी के प्रति हमारा नजरिया बदलता है। अब हम जानते हैं कि जुकाम में होने वाला बुखार असल में हमारे शरीर के लड़ने का तरीका है, कोई बुरी चीज नहीं।
बिल्कुल। यह हमें सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दों को भी बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। हर्ड इम्यूनिटी जैसी बातें अब सिर्फ एक शब्द नहीं लगती।
सही है। हम समझते हैं कि टीकाकरण सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समुदाय की रक्षा करता है, खासकर उन लोगों की जिन्हें किसी वजह से टीका नहीं लग सकता।
और ये हमें टीकों के बारे में फैलाई जा रही गलत सूचनाओं का सामना करने के लिए एक वैज्ञानिक आधार देता है।
और जो लोग एलर्जी या ऑटोइम्यून बीमारियों से जूझ रहे हैं उनके लिए ये ज्ञान बहुत ताकत दे सकता है,
ये समझना कि उनका शरीर ऐसा क्यों कर रहा है।
हाँ, उन्हें अपनी हालत को बेहतर ढंग से संभालने में मदद कर सकता है।
किताब में एक जगह लेखक कहते हैं, हम इम्यून सिस्टम की भाषा बोलना सीख रहे हैं
ताकि हम उसे अपने थेरेप्यूटिक लक्ष्यों की ओर निर्देशित करने के लिए निर्देश दे सकें।
इसका मतलब है कि हम अब सिर्फ इम्यून सिस्टम को दबाने या बढ़ाने की नहीं बल्कि उसे एक प्रशिक्षित जासूस की तरह
सटीक रूप से नियंत्रित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
तो आज की चर्चा का सार क्या है?
मेरे लिए जो बात सबसे ज्यादा घर कर गई है वो यही है कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली एक दोधारी तलवार है।
इसकी शक्ति हमारी रक्षा भी कर सकती है और अगर ये संतुलन से बाहर हो जाए तो हमें खत्म भी कर सकती है।
ये अच्छा या बुरा नहीं है,
ये बस शक्तिशाली है और संतुलन पर निर्भर है।
और मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि हमें अपने शरीर पर भरोसा करना सीखना चाहिए। ये कोई नाजुक मशीन नहीं है जो आसानी से टूट जाए।
सही।
ये अरबों सालों के विकास का नतीजा है, एक बुद्धिमान, सीखने वाला और खुद को ठीक करने वाला सिस्टम।
तो इसे बूस्ट करने की कोशिश करने के बजाय
हमें इसे वो माहौल देना चाहिए जिसमें ये अपना काम सबसे अच्छे तरीके से कर सके। अच्छा खाना, अच्छी नींद और कम तनाव।
बिल्कुल सही। तो हम आज की चर्चा को श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ समाप्त करते हैं।
सोचने के लिए सवाल है, अगर हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को एक भाषा सिखाकर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार किया जा सकता है तो भविष्य में हम किन बीमारियों पर विजय पा सकते हैं जिनकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते?
अल्जाइमर, उम्र बढ़ना,
संभावनाएं अनंत है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।